ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नम्ने गौरस्तिषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वैराग्यजुगभक्तिरसंप्रयत्नय्यपायमानुभवसुमन्नं कृपाम्बुदीर्जापदुःखदुःखीसनातनस्तं प्रभुवाश्रयम् अङ्गश्यामलिच्छटाभिरभितो मन्दीकृतेन्दीवरं जड्डञ्जागुडलोचिसङ्गीतदतं पट्टं वरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदिलसद्दामाभिरामोदरम् राधास्कन्दनिवेशितोज्ज्वलभुजम् कैवास्मि कवैवास्मिन् न जीवन्तेऽभिनयमाम् कल हमने बतलाया था कि शुभानंदिनी राधा ब्रह्मा इत्यादि के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि वे ऐश्वर्य ज्ञान से संबंधित हैं। इस लीला में केवल मात्र सखी बिना ये लीला है, अन्य नहीं गति। सखी भावे जेई तारे करे अनुगति, राधा कृष्ण पुंज सेवा साध्य से ही पाए, से ही साध्य पाईते आर नहीं कर पाए। सखी बिना यही लीला अंदर नहीं गति, सखियों के बिना दास सख्य बात्सल्य इन लोगों की भी धर्म में गति नहीं है। इस राधा जी की कुंज सेवा में जो लोग कृष्ण की लीलाओं को श्रवण कर और सखी भाव से उनको अनुगमन करता है, राधा कृष्ण की कुंज सेवा साध्य के रूप में वही प्राप्त होता है। कोई कोई भी दूसरा उपाय नहीं है। किशोरी जी की किंकरियां सेवा में सब समय तत्पर रहती है। दिवारत कहीं कर्ज शब्द में सेवा की उत्कट भावना की अभिव्यक्ति है, कहीं दासी से भी अधिक उदार शब्द कहीं कर्ज है, इसमें सेवा की उत्कट भावना की अभिव्यक्ति है। कैंकर किम करोमी, किम करोमी कैंकर से आए, मैं क्या करूं, मैं क्या सेवा करूं, मैं क्या सेवा कर सकती हूं। शुद्ध राधा दास या मंजरी भाव इसमें अभिव्यंजना है। इसलिए कंकरी इस श्लोक में जो कहा है, कैंकर्यमेव मम जन्मनि जन्मनि स्यात् राधा सुधार सुधा निधि में इसके भी व्यंजना है। विश्वभानु नंदिनी के इसी कैंकर्य की मुझे जन्म जन्म में प्राप्ति हो। बस देवियों का अनुगत में सेवा करना ही तब तक भावेच्छा मई कामानुगा भक्ति है। कामानुगा की अपेक्षा भी तब तक भावा भावेच्छा मई कामानुगा भक्ति है। यही श्लोक का गुण तात्पर्य है। राधा नाम सुधारसम रसयितुं जिह्वास्तु मे बिह्वला यादो तत्पदाकांक्षित सुचरितं बिन्दाटवीं विधिषु तत्कर्मैव करोतु हृदयं तस्या पदं ध्यायतां तद्भावोत्सव परम भवतु मे तत्प्राणनाथ रति। मेरी जीवा सर्वदा राधा नाम सुधारस आस्वादन में विवल हो जाए और मेरे चरण वृंदावन विधि में सब समय विचरण करे, वृंदावन की गलियों में जिसमें विश्वभान नंदिनी विचरण करती हैं। मेरे दोनों पर स्वामी जी की सेवा में नियुक्त रहें, हृदय उनके उनके चरण कमलों का ध्यान करें, राधा जी के भावोत्सव से उनके प्राणाश्याम सुंदर के प्रति केवला रति प्रकट हो, यही मेरी एकांतिक प्रार्थना है। राधा जी के भाव उत्सव से उनके प्राणनाथ श्याम सुंदर के प्रति केवला रति प्रकटित हो, यही मेरी प्रार्थना है। जीवा भोक्षु बिह्वल राधा नाम गाने वृंदारण्य चलो पर राधा पद अन्वेषण राधा सेवा कर राधा स्मरण मने राधा भावे मति माति भज राधा प्रणय वल्लभे।
मज्ञातवरान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाचक्षुरमृतमेनतस्मै नमः। So continuing on from yesterday, Srila Guru Maharaj reading from Srila Bhaktivinoda Thakur, Sri Bhajana Hasya, fifth Nyan, Ashakti. So the verse from Sri Radharasa Vinidhi, Sri Prabhupada Saraswati Pada is saying, continuing from yesterday, oh, that Srimati Radhika, she is rarely attained, even for great, great devotees like Lord Brahma, because they are always worshipping the Lord in the mood of awe and reverence. Therefore, they cannot attain Srimati Radhika very easily. So in order to attain the service of Srimati Radhika, only one medicine is there. That is to take shelter of the sakis of Srimati Radhika. That palidasi bhav, or the mood to serve Srimati Radhika, is not possible to attain for those who are absorbed in santa dasya, vatsali, or sakya ras. Only one way to enter this pastime is to hear these leelas from rasik Vaishnavas, and by hearing them follow internally the mood of the sakis. This is the ultimate sadhya, or goal of life. And apart from following the sakis, there is no other way to become the palidasi of Srimati Radhika. So upon taking this bhav into your heart, then day and night, one should perform service to Srimati Radhika. Sri Prabhupada Saraswati Pada is saying, O janma janma nischa, O birth after birth, I want to attain the service of Srimati Radhika. So there is Kamanuga Bhakti and Tantan Bhavi Chamaya. Kamanuga means those gopis who want to have direct relationship with Krishna. But this is even inferior, even to the direct service of Srimati Radhika, which is called Tantan Bhavi Chamaya. So here in the next verse, Sri Prabhupada Saraswati Pada is saying, oh, I wish that my tongue will always remain pure by tasting the complete ambrosial nectar of the name of Srimati Radhika. My feet I will use in her service by moving along the paths where each Srimati Radhika has also traveled. And by my mind and heart, I was always remember the feet of Srimati Radhika and her Pranath, her nearest and dearest, Sri Krishna. So this is the essence of all sadhya.
जब भजन और भजनीय के प्रति आसक्ति होती है तब राधा सुधा नदी में कहा गया पादब्ज इसमें कहा गया रघुनाथ दास गोस्वामी ने भक्ति का विलाप पुष्पांजलि में कहा पादाब्जयोस्तव बिना वरदास्यमेव नन्नत कदापि समये किल देवी जाचे सख्यायते मम नमस्तु नमस्तु नित्यं दास्यायते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम् हे देवी हे क्रियाशील देवी आपके चरण कमलों में के श्रेष्ठ दास्य भाव को छोड़कर आपका दासी होना छोड़कर मुझे अन्य किसी प्रकार की वर पाने की अभिलाषा नहीं है। आप वर तो सभी कुछ दे सकती हैं, किंतु बस ये इसी वर की अभिलाषा है। आपके सखी पद को दूर से सदा नमस्कार करता हूं। आपकी सखी पद जो है उसका नमस्कार करता हूं। मेरा दृढ़ अनुराग आपके दासित्व में मेरे में शपथ पूर्वक यही कहता हूं। सत्यम मने शपथ पूर्वक मैं शपथ करके खा करके कहता हूं। तो कह दे किसका शपथ ले रहा है, तो अपने प्रिय से प्रिय वस्तु का वो शपथ लेता है। तो प्रिय तारादा जी के आपके चरणों के ही शपथ करता हूं। तो पद दास्य बिना किछु नहीं मांगी तब सखे नमस्कार अच्छी दास्य लगी। प्रस्तुत श्लोक में रघुनाथ दास गोस्वामी अपने स्वरूपावेश में अपने स्वामी जी के चरणों में आरती में प्रार्थना कर रहे हैं। यह समझो जो यहां भक्तों की शिक्षा के लिए रघुनाथ दास गोस्वामी का दो स्वरूप रतिमंजरी और दूसरा रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी की साधन के क्रम में बढ़ते बढ़ते श्रद्धा निष्ठा रुचि आसक्ति यहाँ पर आसक्ति में उपस्थित हुई है ऐसा समझो। किंतु है क्या, हम समझते हैं कि महाभाव तक पहुंचा है क्योंकि महाभाव राधा जी के दासियों में होता है। इससे भी कुछ ऊपर ही मंजरियों का भाव है, तो इसलिए वहां तक पहुंचे हुए हैं। किंतु इस रघुनाथ भाव में केवल इतना तक दिखलाते हैं। ये मालूम हमको राधा दास्य नहीं है और उसके ललक हो रहे, और हम लोगों को यदि एकांतिक में राधा दास्य की ललक होती तो जितने भी संसारिक आसक्ति के विषय हैं वो सब दूर हो जाते, चित्त एकाग्र हो जाता है और दिन रात पड़े पड़े यही सब होता है। किंतु अभी होता नहीं है। किंतु जो लोग निष्कपट हैं, अन्य कोई कामना वासना नहीं है, भगवान उनका मनोरथ जरूर पूर्ण करेंगे, राधिका जी पूर्ण करेंगे, उनका धाम करेगा, उनके अनुगमन करने वाले करेंगे। तो वो स्वामी जी के चरणों में स्वरूप आवेश, स्वरूप आवेश मैंने क्या, उनका स्वरूप है रति मंजरी। आवेश उस समय में उनके सिद्ध देव उनके शरीर में है, आया है, साधक की दृष्टि से देखने से भी अभी ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कि सिद्ध देह में नहीं, अभी जिस व्यक्ति का नहीं आया है वो ऐसा करेगा। स्वरूप आवेश में सामने जी के चरणों में आरती में प्रार्थना करें। आरती में मैंने क्या, आरती हृदय के अंतरतम से निष्कपट रूप में उससे सराबर करके अपने आप निकल रहा है, वैसे प्रार्थना। हे स्वामी, हे मेरी स्वामिनी, पदाब्जस्तव बिना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी जाचे सख्यायते। हे मेरी स्वामिनी जी, चरण कमलों की सौभाग्य सेवा प्रदान कर, मुझे अपना दासित्व प्रदान कर, अपने चरण की सौभाग्य सेवा। कैसे सेवा? अपने चरणों की। तो चरण कैसे? चरण जो राधा कृष्ण, जो कृष्ण से उनका मिलन कराते हैं, जिस चरणों से चल करके कृष्ण के पास में जाती हैं, उन चरणों का। यह वरदास्य, यह वर बहुत ही श्रेष्ठ है, क्योंकि राधा जी की दासियों में सभ्रम और संकोच भावना से मुक्त है, उनमें तनिक भी किसी प्रकार का संभव नहीं है। धड़ल्ले से राधा कृष्ण जहां भी रहे, एकांत में रहे, सो रहे, खा रहे, पी रहे, एकांतिक रूप में चली जाएंगे। और सब ललिता विशाखा भी है, इनसे उच्च कोटि की है, किंतु इनमें कुछ संभ्रम और संकोच भाव जरूर रहेगा। इसीलिए कहा गया है, तांबूलार्पण पाद मर्दन पयो दाना विशारद भी है। दास्य की अभिलाषा महाप्रभु की करुणा का आस्वादन है। दास्य की अभिलाषा महाप्रभु की, महाप्रभु इसी को देने आए थे। राधा जी के भाव और कांति के लोग करके इसी भाव को देने के लिए आए थे। यही गौड़ीय वैष्णव का हार्दिक अभिप्राय है। गौड़ीय वैष्णव का गौड़ीय वैष्णव तो यही है, जिसके अंदर में ऐसी भावना नहीं है, ऐसी तीव्र अभिलाषा नहीं है, आरती मूलक अभिलाषा नहीं है, वो गौड़ीय वैष्णव अभी नहीं हुआ, आभास है, यही समझो। तो कितने ऐसे लोग हो, हम लोग में तो बहुत से ऐसे है जैसे उसको छूना पसंद नहीं करते। तब यदि हृदय के अंदर में अंतरतम में ऐसा भाव हो और ऊपर से ऐसा कहते हैं तो ये तो बहुत अच्छा है, किंतु अंतर और बाहर दोनों जगह में ऐसी भावना है कि हम लोग योग्य नहीं है, योग्य नहीं हो सकते हैं, तो दूसरी बात है। ऐसे लोगों का संग नहीं करना ही अच्छा है। मंजरिया दासी होकर के भी मधुर रस की पात्री हैं, ये दासी नहीं है केवल। मंजरिया दासी होकर के भी मधुरस की पात्री हैं, निवृत्त निकुंज की के रह के लिए लीला में उनका असंकोच रूप से प्रवेश और सेवा संपादन की दक्षता सुचारुता है, सुदक्ष सुचारुता है। जुगल किशोर को कब किस वस्तु की आवश्यकता हो वो भली भांति जानती हैं, कब क्या चीज की जरूरत होती है। तांबूल, तांबूलार्पण पाद मर्दन पयो दास दान अविशार आदि भी इत्यादि। हृदय का मर्म जान करके सेवा करना, यही मंजरियों का वैशिष्ट है। इसी की हम सेवा कर रहे हैं, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या पीना अच्छा लगता है, कैसे सहन करना अच्छा लगता है, उनको कैसी हवा अच्छी लगती है, जो इसको समझ करके उसके अनुरूप करे तो यथार्थ वो सेवक है। आज जो नहीं जानता, सेवा की भावना अच्छी है किंतु समयोचित तो वो जानता नहीं है कि कैसे कब कैसे क्या सेवा होनी चाहिए, वो यथार्थ अभी सेवक नहीं है। ऐसे जगत में बहुत कम सेवक है। मंजरियों की मनोरम सेवा परिपाटी देख करके स्वयं ऋषभ शिरोमणि श्याम सुंदर के मन में भी ऐसी सेवा की अभिलाषा है। इन मंजरियों की सेवा देख करके, रूप मंजरी, रति मंजरी, लौंग मंजरी की सेवा देख करके, अरे स्वयं रसिक शिरोमणि श्याम सुंदर के मन में ऐसी भावना आती है कि मैं भी वैसे ही सेवा करूं। किसकी? राधा जी की सेवा करूं। और की तो बात क्या, उनकी परिपाटी ही ऐसी है। अधिकांश अपने के इच्छा के विपरीत भी दास को, दासी को सेवा करनी पड़ती है। बड़े कष्ट की बात है। लक्ष्मण जी को देखो, वो तो तंग आ गए, किंतु कभी मंजरियां तंग आती हैं? यही वैशिष्ट्य इन लोग। और मैं मन महसूस करके भी वो सेवा करनी पड़ती है, आदेश पालन करना पड़ता है। और इसमें राधा जी की कोई भी सेवा ऐसी नहीं है जो रस से भरी हुई हो ना हो। और कोई भी दासी करके मैं आपका बड़ा भाई हो जाऊंगा या वैसा हूं, कृष्ण को भी ललक पैदा होती है इसके लिए। विशेष करके स्वाधीन भर्तृका श्री राधा श्याम सुंदर को आदेश देती हैं, मेरे अस्तबस्त वेशभूषा का संस्कार करो। आपने मेरे श्रृंगार को नष्ट कर दिया है, बिगाड़ दिया है, नष्ट कर दिया। अरे दूसरी सखियां उपहास करेंगी, तो कृष्ण इस पर भी ध्यान नहीं देते, कहते आपने अपराध किया है। अपराध आपने किसके प्रति अपराध किया? जिस देवता को आप ले आए निकालकर, उसी देवता का अपराध आप कर रहे हैं ना? अरे अर्चन पूजन करके और ठाकुर को फिर गर्भगृह में पहुंचा देना उचित है, और उनके निर्माल्य को हटा देना उचित है। आपने तो निर्माल्य ही हटाया, न ठाकुर जी को भीतर ही प्रवेश कराया। कितने सुंदर सब भाव दिए हैं इसके अंदर में, कोई पढ़ भीतर में प्रवेश करके पढ़े तो समझ सकता है, अन्यथा नहीं समझ सकता ये भाव। स्वामी जी का मनोभाव समझकर किंकरी बेस रचना की सामग्री ले आई है, वो पहले से उपस्थित करते हैं। देखो ये तो सेवा है ना, पहले से ये ऐसा हो सकता है, लेकर कर होगा ही। कोई सोने की किंकरी ले आई, सोने की कंघी ले आई, कोई कुछ ले आया, कोई नाना प्रकार के कमल के मकरंदों को और उसमें रंग मिला करके ले आई है, उसे तरह तरह के हैं जिसे ये सब बनाना है और सब श्रृंगार करना है, वेश रचना है, फूलों की माला मर्दित हो जाती है तो उसके बदले नई फूलों की माला ले आती है। फिर तो सारा गोविंद लीलामृत और ये सब यहाँ पर उपस्थित हो जाएगा। श्रीमती जी श्याम सुंदर के को अलता लगाने का, जावक रस लगाने का दे, वे चरण जुगलों का सौंदर्य जनक करके प्रेम में विवश हो गए, हाथ में जड्यता हो गई, जावक लगा ही नहीं सके। तो उन्होंने धक्का दे दिया और कहा दासी को ये तुम इसको नहीं आ रहा। तो कहते हैं फिर होश में आकर के कहते हैं ये क्या करेगी, मैं जैसा करूंगा। और जब कृष्ण स्पर्श कर रहे हैं तो राधा जी का हृदय में कंपन हो जाता है, वो प्रेम में विवश होकर के जड भाव को प्राप्त हो जाती है। सात्विक विकारों के से सारे अंग पुलकित और कंपित हो रहे हैं, तुलिका पकड़ने में असमर्थ हो रहे हैं। प्रभु उनकी दशा देख करके स्मृति जी मृदु मधुर हास्य करती हैं तथा रति मंजरी के को अलता लगाने का आदेश देती हैं। इस तरह की अनेकों लीला माधुरियों का आस्वादन किंकरियां निर्बाध रूप में करती हैं, जो कि और लोग यहाँ पर अभी ललिता विशाखा नहीं आई, उनके अभी वो इसके बाद में जब श्रृंगार हो जाएगा तब आएंगे, इसके पहले नहीं। इसमें और भी आनंद की वृद्धि है, रस की वृद्धि है। श्रीमती जी से मिलने का सुयोग प्राप्त करना हो या उनके मान प्रसादन का अवसर हो, श्याम सुंदर को मंजरियों का आश्रय लेना ही पड़ता है, बिना उनके आश्रय के नहीं होगा। नंदालय में रात्रि भोजन लीला में श्याम सुंदर जाने के लिए व्याकुल हैं, मिलना होगा कि नहीं। वे दासी के हाथ पैर को लगाकर इशारे से पूछते हैं, दासी भी उनके हाथ को अपने पैर से दबाकर संकेत करती हैं, होगा मिलन, मिलन होगा कि नहीं। वो अपने इशारे से ही चरणों को स्पर्श करके पूछते हैं और वो चरण उसी के तरह से उत्तर भी पैरों की गति से ही देती है, स्पर्श से ये मिला मिलन होगा होगा। इन मंजरियों का अपना कुछ नहीं, सब कुछ जुगल सुख के लिए ही है। पद्मर्यादा में यह पृष्ठ सखियों की श्रेष्ठता है। पद्मर्यादा में प्रिय नर्म ललिता विशाखा इत्यादि प्रिय नर्म सखी, प्रिय सखी, नित्य सखी, प्राण सखी और पृष्ठ सखी, प्रिय नर्म सखी, सखी जो कृष्ण पक्षीय हैं, उम्र में छोटी हैं, जैसे धनिष्ठा बृंदा, दोनों को बृंदा को भी कहा गया, और नित्य सखियां राधा जी पक्षीय, प्राण सखियां उनमें भी मुख्य रूप में मंजरियां, मंजरियों में भी श्रेष्ठ रूप मंजरी रती इत्यादि ये श्रेष्ठ है। और इनसे प्राण अफेर प्रिय नर्म सखी, प्रिय नर्म सखी ललिता विशाखा। पद्मर्यादा में प्रिय नर्म सखी या पृष्ठ सखियों की श्रेष्ठता है, किंतु सेवा सौभाग्य की श्रेष्ठता किंकरी में ही है। अद्भुत बात, श्रेष्ठ वस्तु को मिला नहीं और नीचे के व्यक्ति को ये मिल गया, हो सकता है गवर्नर के पास में या वायसराय के पास में, अभी हमारे राष्ट्रपति हैं उनसे मिलने के लिए उनके चपरासियों के पास में चला गया। पद्मर्यादा में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से लेकर कमिश्नर, उससे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये सब बड़े हैं, किंतु पद्मर्यादा में होते हुए भी उनको उनके निकट जाकर के सेवा करने का सुयोग उनको नहीं है। किसी को भी जाकर के उनसे पूछ करके तब आदेश लेना होगा कि मैं उनसे मिलूं, तब वो आदेश मिलेगा। ऐसी किंकरियों का स्वभाव के कितना बड़ा ऊंचा है ये समझना बड़ा भारी है। ब्रज की मधुर रस, प्राण सखी और नित्य सखी राधा स्नेहादि का है, ये मंजरी कहलाती हैं। ऐसी मंजरियां वो चंद्रावली के गण में भी हैं, और सुहित जो सखी है श्यामला और भद्रा के में, ये चारों ग्रुपों में ही ऐसा है, किंतु श्रीमती राधिका जी का गण अधिक प्रसिद्ध है। मंजरियां सब जगह हूँ, क्यों नहीं हूँ, क्यों नहीं हूँ, सब में हो सकता है। चंद्रावली की ऐसी सखियां नहीं होंगी, क्यों नहीं होगा। कहीं लिखा तो नहीं है, किंतु विवेचना करने पर ऐसा मान लो जरूर। उनको भी जैसे इन प्रकार के गण हैं, उनका भी गण ऐसा ही है। प्राण सखी, नित्य सखी, राधा स्नेहाधिका है, मंजरी कहलाती है। इनमें सख्य तथा सेवा भाव तदात्म होता है। इनमें सख्य और सेवा भाव का तदात्म्य होती है। ये राधा के चरण कमलों में अन्य अन्य चित्त होकर के रहती हैं और स्वप्न में भी कृष्ण के अंग की वांछा नहीं करती हैं। अनन्य राधा पद कमल दास्य रसधि हरे संगे रंग समय नापि ददत वृंदावन महिमा अमृत में दिया गया। राधा स्वरूप कृष्ण प्रेम कल्पलता सखीगण हय तार पल्लव पुष्प पाता कृष्ण लीलामृत यदि लता के सिंचय निज सुख होते पल्लवेर कोटि गुण सुख है। गोविंद लीलामृत ने भी ऐसा ही वर्णन किया गया, इसलिए विलाप पुष्पांजलि में कहा गया है।
मदन मोहन मंदिर থেকে
অন্য কোটের প্রসাদ। আমি আদেশ করেছিলেন যে একবার ওখানে
অধেকক্ষণ কথা দিতে তা আলোচনা হয়।
আমি পরে আসব,
আমি ওখানে যাই আসব। আজকে না, কালকে, পরশু আমি যাব।
That means the process of bhakti, harinam, ityadi. And then one will have deva shakti towards bhajaneya. Means direct attraction to Radha and Krishna. This is the fifth jnana, or the level of a shakti. So Sri Raghunath Das Goswami, being absorbed in his siddhadeha, spiritual body, he is praying, adabdayos kalavina varadascharevam, anadkadapi samaya kilanatche devi, sakyayate, rasastu rasastu nityam, dasayate, Sri Raghunath Das Goswami is praying, Oh, Srimati Radhika, I do pranam hundreds of times to the position of being a Sakhi or a friend of Srimati Radhika, but my real desire is to actually attain the service, the Dasya Bhava of Srimati Radhika. So Sri Raghunath Das Goswami is completely absorbed in his Sarakdeya, in his Siddhadeya, and he is praying like this. So we should understand that Sri Raghunath Das Goswami has two swarups. One swarup is as a parika of Sri Chaitanya Mahaprabhu, that is Sri Raghunath Das Goswami. And another swarup he has is as the maidservant of Srimati Radhika, that is Sri Rati Manjari. So Sri Raghunath Das Goswami is showing in his own life how he went from Shraddha to Bhajana Kriya, to Nishtha, to Ruchi, to Ashakti, to Bhava. He is showing like this, but actually we should understand that he is eternal associate of Radha Krishna, and he is always serving Srimati Radhika in the mode of Mahabhava. For the teaching us, he is showing how he went from stage to stage. But actually he never went from stage to stage. He is always situated on the highest platform. So here, in this verse, he is showing us what will come in our hearts at the stage of a Shakti. So if you want to, externally it appears that they are serving only the mood of Dasya Ras. But no, we should understand they are the complete patra, or part of Madhur Ras, completely. So, if you want to serve Srimati Radhika in this ekantik, one-pointed mood, then my dear friends, you'll have to give up all other different types of material desires. Otherwise, if you cannot give up your material desires, then how do you sink in this Ras? It's quite impossible. So once you give up all Ananya Balas, and once you complete the Niskapat without any type of duplicity, that means no material desire, then there is a chance for us to become absorbed in this stage in Asrup and Asiddhadeha. So this is called Atamaya. This pratama is called Atamaya. This prayer is called Atamaya. That means full of desire, utkanta, or intense desire to attain this ultimate goal of the service of Srimati Radhika. Oh, hey Swamini, oh Srimati Radhika, Sri Raghunath Das Goswami is praying. When will I be very fortunate, lucky, to get the service of your most attractive lotus feet? Which lotus feet? Srimati lotus feet, Srimati Radhika's lotus feet are those feet which are always going to Abhisar, to meet with Krishna. So why the service in the mood of Paliyadasi is superior to the mood of serving Srimati Radhika as a friend or in Sakhi Bhav? Because the Manjaris are so much close to Srimati Radhika, they feel no sankoch, means they feel no shyness, no type of hesitation. So therefore, they can, when Radha Krishna are alone, eating, sleeping, or performing pastimes, then the Manjaris are so much close to Srimati Radhika, they can go directly to Radha Krishna when they are alone, and Radha Krishna will feel no shy, no shame or shyness, and the Manjaris also will feel no shame, no hesitation. Tambulapanam paramadam dhanabhsaradhi. In this slok, Raghunath Das Goswami is praying. Oh, when will I be fortunate to serve? What type of seva? Tambulapanam. Tambula means like betel nut. I can put betel nut in the mouth of Sri Radha Krishna. Paramadam. I can massage their lotus feet. I can do all these types of seva. I desire these things. So Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give these all this moon of service to Srimati Radhika. Who is Chaitanya Mahaprabhu? He is Krishna Sarup, but completely covered in the color, the complexion, and the bar, the moons of Srimati Radhika. So because Srimati Radhika is there, then Chaitanya Mahaprabhu can give all these things to us. So this is the complete ultimate goal of the Gaudiya Vaishnavas. So one who does not have in his heart this lalasa or this greed to serve Srimati Radhika in this mood, actually he cannot be called Gaudiya Vaishnava. He can be called an avas, or a semblance, or a shadow of a Gaudiya Vaishnava. So what to speak of those people who, from a very great distance, are afraid to touch these things? Oh, I am not qualified, they say. So Guru Mahārāj said, stay very far away from them. Never do those type of association, because they are disrespecting Srimati Radhika. So the Manjaris can do all type of seva. Like when they know how to serve, they know how to fill the heart's desire of both Radharani and Sri Krishna. They know what Radha and Krishna like to eat, how they like to sleep, what type of fan they like, what things they like to drink. So one who knows all these things about how our Ishtadev can be pleased, then this can be called seva. Otherwise it cannot be called seva. So how much attractive is the service of Srimati Radhika performed by the Manjaris like Sri Rupa and Sri Radhi Manjari? Then when Krishna sees this, even Krishna develops a greed. Oh, I'd also like to engage in the service of Srimati Radhika like that. So much attractive. And who is Krishna? He is rustic ceremony, but when he sees the good fortune of the Manjaris, even he becomes desirous to perform that type of seva. Why? Because all seva to Srimati Radhika is completely full of all types of nectarian ras. Therefore, Krishna also desires because he is rustic ceremony. Srimati Radhika, she is Swadhina Bhatrika. That means she is so much proud. That time she can order Krishna. Hey Krishna, do this, do that. Oh, my decoration, you have destroyed my decoration. You have smudged my kajal. You have smudged my decoration. Therefore, you have destroyed everything. You should do nicely again. And Krishna with his own hand is doing. So when Krishna is doing this, all other gopis are laughing. Oh, Krishna, you don't know how to do it. So the Manjari, they have arranged before Radharani's decoration is destroyed. Before that, they have already arranged all the ingredients for Srimati Radhika's seva. They have arranged all types of ornaments, decoration. And out of flowers, they have made different types of earrings, mala, hair decorations. This is called seva. So anyone has greed? Then all these things described in Sri Govinda Lilamrita and Sri Krishna Bhavanamrita. So Krishna, he is decorating, and the Manjaris are pushing. Oh Krishna, you only know cow grazing, you don't know how to decorate Srimati Radhika. So when Krishna touches the feet of Srimati Radhika, then all Srimati Radhika Radha's body becomes Asta Sapikla, Krishna's. Krishna's body, when he touches Srimati Radhika, then all astasthamic bhavs come on him. And Srimati Radhika is very sweetly smiling. So many, many thousands of Thakur's leelas. And Sri Raghunandas Goswami is praying, when will I have the good fortune to directly seva, do seva on all these pastimes? So when Radha and Krishna are together, that time the astasakis even, Lalita Vishaka, Champaklata, they cannot go and meet with Krishna. Only after the manjaris have finished decoration, then they can come afterwards. So how much good fortune is the manjaris? So Krishna's then, all this is for the Ajati Rati Sarak. That Sarak in whom Bhav has not awakened. But the Ajati Rati Sarak, that person who has achieved Bhav. In this stage, on the fifth Nyan, what pastime do we remember? He will be remembering the Astakala Lila of Krishna. That time he will remember that Krishna, he is burning in separation. Oh, how can I meet Srimati Radhika? How can I meet Srimati Radhika? And Krishna takes the shelter of the gopis, the sakis and manjaris of Srimati Radhika, and they help, taking Krishna by the hand. They arrange how Krishna can meet with Srimati Radhika. So the manjaris, they only want the happiness of Radha Krishna. They don't even have a tinge of smell of happiness of their own desire. And even in their dreams, they never directly want to meet with Krishna. They are happy only when Srimati Radhika meets with Krishna. So there are many types of gopis. The Priyanama Sakis, headed by Lalita, Vishaka, Champaklata, Tungavidya. There are the Nitya Sakis. They are the Sakis of Srimati Radhika. The Pran Sakis, they are the Manjaris. So both the Nitya Sakis and the Pran Sakis, they are called Radha Adiksneha. They have a special extra affection towards Radhika. There are also the Sakis. They are inclined more towards Krishna, in the Paksha Krishna, included in this group are Sakis like Brinda, Dhanishta. They are the Surid Sakis, that means they have affection towards Srimati Radhika. And their middle point, even Chandravali has Sakis, even though it's not written, but also they are serving Chandravali. But we're not attracted to that. Manjaris. So, the Manjaris, by their fortune, by their seva, are most fortunate. Guru Maharaj says, just like the Astasakis are superior to the Manjaris. But still, in order to meet with Srimati Radhika, you have to take short of Manjaris. Like if you want to meet the Prime Minister, then we have to go to the, say, General Secretary. Even though the Prime Minister is millions of times higher than the General Secretary, without meeting with the General Secretary, making friendship with him, and getting his blessing, then it's quite impossible to meet with the Prime Minister. So in the same way, if you want to meet with Srimati Radhika, unless you take shelter of the Manjaris, it's quite impossible.
Kalke, porshu ami jabo.
One will have deep attachment towards Bhajan, that means the process of Bhakti, Harinam, Ityadi. And then one will have deepa shakti towards bhajaniya, means direct attraction to Radha and Krishna. This is the fifth jnana, or the level of a shakti. So Sri Raghunandan Das Goswami, being absorbed in his siddhadeha, spiritual body, he is praying, adabdayos kalavina varadascharevam, anadkadapi samaya kilanache devi, sakyayate rasastra rasastra nityam, dasayate rasastra namastra namastra satyam. Sri Raghunandas Goswami is praying, oh, Srimati Radhika, I do pranam hundreds of times to the position of being a Saki or a friend of Srimati Radhika. But my real desire is to actually attain the service, the Dasya Bhava of Srimati Radhika. So Sri Raghunandas Goswami is completely absorbed in his Sarakdeya, in his Siddhadeya, and he is praying like this. So we should understand that Sri Raghunandas Goswami has two swarups. One swarup is as a parikar of Sri Chaitanya Mahaprabhu, that is Sri Raghunandas Goswami. And another swarup he has is as the maidservant of Srimati Radhika, that is Sri Rati Manjari. So Sri Raghunandas Goswami is showing in his own life how he went from Shraddha to Bhajana Kriya, to Nishtha, to Ruchi, to Ashakti, to Bhava. He is showing like this, but actually we should understand that he is eternal associate with Radha Krishna, and he is always serving Srimati Radhika in the mode of Mahabhava. For the teaching us, he is showing how he went from stage to stage. But actually, he never went from stage to stage. He's always situated on the highest platform. So here, in this verse, he is showing us what will come in our hearts at the stage of a Shakti. So if you want to, externally appears that they are serving only the moon of Dasi Ras. But no, we should understand they are the complete Patra, or part of Madhur Ras, completely. So, if you want to serve Srimati Radhika in this akantik, one-pointed mood, then my dear friends, you'll have to give up all other different types of material desires. Otherwise, if you cannot give up your material desires, then how do you sink in this Ras? It's quite impossible. So once you give up all Ananya Balas, and once you complete the Niskapat without any type of duplicity, that means no material desire, then there is a chance for us to become absorbed in this stage in Asrup and Asidadeha. So this is called Atamaya. This pratam is called Atanaya. This prayer is called Atamaya. That means full of desire, utkanta, or intense desire to attain this ultimate goal of the service of Srimati Radhika. Oh, hey Swamini, O Srimati Radhika, Sri Raghunath Das Goswami is praying. When will I be very fortunate, lucky, to get the service of your most attractive lotus feet? Which lotus feet? Srimati lotus feet, Srimati Radhika's lotus feet are those feet which are always going to Abhisa, to meet with Krishna. So why the service in the mood of Paliyadasi is superior to the mood of serving Srimati Radhika as a friend or in Sankhi Bhav? Because the Manjari are so much close to Srimati Radhika, they feel no sankoch, means they feel no shyness, no type of hesitation. So therefore, they can, when Radha Krishna are alone, eating, sleeping, or performing pastimes, then the Manjaris are so much close to Srimati Radhika, they can go directly to Radha Krishna when they are alone, and Radha Krishna will feel no shame or shyness, and the Manjaris also will feel no shame, no hesitation. In this slok, Raghunath Das Goswami is praying. Oh, when will I be fortunate to serve? What type of seva? Tambulapanam. Tambula means like betel nut. I can put betel nut in the mouth of Sri Radha Krishna. Padamadanam. I can massage their lotus feet. I can do all these types of seva. I desire these things. So Sri Chaitanya Mahaprabhu came to give these all this moon of service to Srimati Radhika. Who is Chaitanya Mahaprabhu? He is Krishna Sarup, but completely covered in the color, the complexion, and the bar, the moons of Srimati Radhika. So because Srimati Radhika is there, then Chaitanya Mahaprabhu can give all these things to us. So this is the complete ultimate goal of the Gaudiya Vaishnavas. So one who does not have in his heart this lalasa or this greed to serve Srimati Radhika in this mood, actually he cannot be called Gaudiya Vaishnava. He can be called an avas, or a semblance, or a shadow of a Gaudiya Vaishnava. So what to speak of those people who, from a very great distance, are afraid to touch these things? Oh, I am not qualified, they say. So Guru Maharaj said, stay very far away from them. Never do those type of association, because they are disrespecting Srimati Radhika. So, the Manjaris can do all type of seva. Like when they know how to serve, they know how to fill the heart's desire of both Radharani and Sri Krishna. They know what Radha and Krishna like to eat, how they like to sleep, what type of fan they like, what things they like to drink. So one who knows all these things about how our Ishtadev can be pleased, then this can be called seva. Otherwise it cannot be called seva. So how much attractive is the service of Srimati Radhika performed by the Manjaris like Sri Rupa and Sri Radhi Manjari? Then when Krishna sees this, even Krishna develops a greed. Oh, I'd also like to engage in the service of Srimati Radhika like that. So much attractive. And who is Krishna? He is rustic ceremony, but when he sees the good fortune of the Manjaris, even he becomes desirous to perform that type of seva. Why? Because all seva to Srimati Radhika is completely full of all types of nectarian ras. Therefore, Krishna also desires, because he is rustic ceremony. Srimati Radhika, she is Swadhina Bhatrika. That means she is so much proud. That time she can order Krishna. Hey Krishna, do this, do that. Oh, my decoration, you have destroyed my decoration. You have smudged my kajal. You have smudged my decoration. Therefore, you have destroyed everything. You should do nicely again. And Krishna with his own hand is doing. So when Krishna is doing this, all other gopis are laughing. Oh, Krishna, you don't know how to do it. So the Manjari, they have arranged before Radharani's decoration is destroyed. Before that, they have already arranged all the ingredients for Srimati Radhika Seva. They have arranged all types of ornaments, decoration. And out of flowers, they have made different types of earrings, mala, hair decorations. This is called Seva. So anyone who has greed, then all these things described in Sri Govinda Lilamrita and Sri Krishna Bhavanamrita. So Krishna, he is decorating, and the Manjaris are pushing. Oh Krishna, you want to know cow grazing, you don't know how to decorate Srimati Radhika. So when Krishna touches the feet of Srimati Radhika, then all Srimati Radhika Radhika's body becomes Asmastapikvah, Krishna's. Krishna's body, when he touches Srimati Radhika, then all Asmastapik Bhavs come on him. And Srimati Radhika is very sweetly smiling. So many, many thousands of type of lilas. And Sri Raghunanda Das Goswami is praying, when will I have the good fortune to directly do seva on all these pastimes? So when Radha and Krishna are together, that time the Astasakis even, Lalita Vishaka, Champaglata, they cannot go and meet with Krishna. Only after the Manjaris have finished decoration, then they can come afterwards. So how much good fortune is the Manjaris? So Krishna's then, all this is for the Ajati Rati Sarak. That Sarak in whom Bhav has not awakened. But the Ajati Rati Sarak, that person who has achieved Bhav. In this stage, on the fifth Nyam, what pastime do we remember? He will be remembering the Astakala Lila of Krishna. That time he will remember that Krishna, he is burning in separation. Oh, how can I meet Srimati Radhika? How can I meet Srimati Radhika? And Krishna takes the shelter, the Sakis and Manjaris of Srimati Radhika, and they help, taking Krishna by the hand. They arrange how Krishna can meet with Srimati Radhika. So the Manjaris, they only want the happiness of Radha Krishna. They don't even have a tinge of smell of happiness or their own desire. And even in their dreams, they never directly want to meet with Krishna. They are happy only when Srimati Radhika meets with Krishna. So there are many types of gopis. The Priyanama Sakis, headed by Lalita, Vishaka, Champaklata, Tungavidya. They are the Nitya Sakis. They are the Sakis of Srimati Radhika. The Pran Sakis, they are the Manjaris. So both the Nitya Sakis and the Pran Sakis, they are called Radha Adiksneha. They have a special extra affection towards Radhika. There are also the Sakis. They are inclined more towards Krishna. In the Paksha of Krishna, included in this group are Sakis like Brinda, Dhanishta. They are the Surit. That means they have affection towards Srimati Radhika. And their middle point, even Chandravali has Sakis, even though it's not written, but also they are serving Chandravali. But we're not attracted to that. Manjaris. So, the Manjaris, by their fortune, by their seva, are most fortunate. Guru Maharaj says, just like the Astasakis are superior to the Manjaris, but still, in order to meet with Srimati Radhika, you have to take shelter of the Manjaris. Like if you want to meet the Prime Minister, then we have to go to the, say, General Secretary. Even though the Prime Minister is millions of times higher than the General Secretary, without meeting with the General Secretary, making friendship with him, and getting his blessing, then it's quite impossible to meet with the Prime Minister. So in the same way, if you want to meet with Srimati Radhika, unless you take shelter of the Manjaris, it's quite impossible.